Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Purana Pratime, 101, page number. 108. हाँ, वो नया एडिशन होगा, ये पुराना एडिशन है. मंत्र यही है, पहले अध्याय का सातवां मंत्र उद्गीतम. अभ्यास करते हो? उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्मा तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम् च अत्रांतरम् ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायोनिमुक्तः उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम् च अत्रांतरम् ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्तः उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम् च अत्रांतरम् ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्तः तो ये मंत्र की व्याख्या से पहले संबंध भाष्य है, उसको थोड़ा देख लें, तब मंत्र का तात्पर्य समझ में आएगा. पहले मंत्र से दूसरे मंत्र के बीच में क्या संबंध है, इसको आपके अंग्रेजी भाषा में लिंक बोलते हैं ना. तो लिंक को सिद्ध करने वाला लिंक, ये इसको संबंध भाष्य, और लिंक को ही संबंध बोलते हैं, है ना. इससे पहले का ये प्रसंग कार्य ब्रह्म के बारे में है. तो दो श्लोकों के द्वारा, दो मंत्रों के द्वारा कार्य ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है. जैसे पहले बताया था चौथा मंत्र द्वारा ब्रह्मचक्र, उसको ब्रह्मचक्र बोलते हैं. तो आप लोग भी कई बार संसार के बारे में शब्द प्रयोग करते हो ना, संसार चक्र. ये संसार चक्र है, और चक्र का अर्थ हो गया व्हील, है ना, चक्र व्हील. हमको अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी जो आप लोगों ने सुनाया है उसको सुन सुनकर सीखा है. आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ के सीखा है, हमने अंग्रेजी सुन के सीखा है, पढ़ा नहीं है. तो तम एक नेमिम त्रिवृतम षोडशांतम, शायद मोनिश को पता है, इस मंत्र पर हमने 8 दिन प्रवचन किया था. यहां है इसकी श्रृंखला, सीडी में होगा. इस मंत्र की व्याख्या खोज के सुनोगे, 8 दिन तक इसकी व्याख्या हुई है लगातार. ये संसार चक्र, इसको वेदांत की भाषा में यदि समझना हो तो उसको ब्रह्मचक्र। तो इसको ब्रह्मचक्र क्यों कहा? क्योंकि ये ब्रह्म से सिद्ध हुआ हुआ चक्र है। तो उसी को फिर आगे जाकर कहा पंचस्रोतो अंबु पंचयोनिग्रवक्राम। तो पहले चौथे मंत्र के द्वारा संसार को चक्र के रूप में वर्णन किया और ये पांचवें मंत्र के द्वारा संसार को नदी के रूप में प्रस्तुत किया। तो एक नदी में क्या क्या होते हैं उस सबको यहां वर्णन किया, एक चक्र में क्या क्या होते हैं उसको उस मंत्र के द्वारा वर्णन किया। फिर इसका उपयोग करने वाला उपयोक्ता भोक्ता सर्वाबीजे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन हमसो ब्राह्मते ब्रह्मचक्रे। इस ब्रह्मचक्र में वो हंस नामक जीव घूमता ही रहता है ब्रह्मचक्र में, जायस्व मृयस्व। तो ब्रह्मचक्र में घूमने वाला कौन अंश है? तो ये जीव है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही तो व्हील है, है ना? यही तो चक्र है, यही व्हील है। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो अस्मिन अंशो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे। तो कब तक ये घूमता रहेगा? बोले जब तक ये ब्रह्मचक्र के बारे में अनुसंधान नहीं करेगा। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा। ब्रह्मचक्र को अपने से भिन्न और अपने को ब्रह्मचक्र से भिन्न पृथक। ब्रह्मचक्र का पार्श न होकर ब्रह्मचक्र का प्रकाशक हो। पृथक का मतलब क्या हुआ? अलग कैसे होगा? एक तो अलग होता हुआ भी ब्रह्मचक्र का पार्श्व होगा, क्योंकि ब्रह्मचक्र में कई चीज हैं, इसलिए स्वगत भेद होगा ना। धुरी से नेमी अलग होंगे, आरे अलग होंगे, ऐसे ऐसे। तो उसको क्या कहते हैं? अलग होने पर भी उससे उसी का पार्श्व है, ब्रह्मचक्र के पार्श्व है, उसको स्वगत भेद कहा जाएगा। यहां पृथक का अर्थ स्वगत भेद से रहित। ब्रह्मचक्र है परंतु ब्रह्मचक्र का पार्श नहीं है, उससे भिन्न है। एक ब्रह्मचक्र है, ब्रह्मचक्र के अलग अलग पार्ट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की भिन्नता है। भिन्नता होने पर भी वह ब्रह्मचक्र का ही पार्ट्स है, अवयव है। वो जब तक अपने आप को ब्रह्मचक्र का ही अवयव मानेगा तब तक वो घूमता ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मचक्र पूरे घूमता है। पूरा ब्रह्मचक्र घूमेगा तो उसके सभी पार्ट्स घूमेंगे ना, घूमेंगे कि नहीं? सभी पार्ट्स घूमेंगे। तो पृथक आत्मानम किससे अलग? ब्रह्मचक्र से अपने को अलग। मत्वा कैसे मानेंगे? कि ब्रह्मचक्र को जानने वाला यानी प्रकाशित करने वाला मैं प्रकाश अलग हूं। तो ब्रह्मचक्र का प्रकाशक ब्रह्मचक्र को प्रकाशित तो करता है लेकिन ब्रह्मचक्र के पार्ट्स के रूप में नहीं रहता। समझ रहे हैं ना? सूर्य का प्रकाश घूमते हुए व्हील को प्रकाशित तो करता है लेकिन घूमते हुए व्हील को प्रकाशित करने पर भी वो उस व्हील का पार्ट्स नहीं है, अलग है वो, पृथक आत्मान। और साथ ही प्रेरितारम पृथक, सारे संसार चक्र को घूमने में प्रेरित करने वाला प्रेरितारम चमत्व, वो प्रेरिता भी, प्रेरिता माने प्रेरणा देने वाला भी, प्रेरणा करने वाला भी संसार चक्र से भिन्न है। इसका मतलब हुआ तीन चीज सिद्ध हो गए, संसार चक्र, जीवात्मा और प्रेरित माने प्रेरक ईश्वर, ये सब कार्य ब्रह्म है। चुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति, इस तरह पूरे संसार को एक कार्य के रूप में प्रस्तुत किया प्रपंच को। अब यहां पूर्व पक्ष एक प्रश्न कर रहा है और संबंध भाव से देख लो, ननु नहीं, आप क्या उच्चारण, आप उच्चारण करते हो? अच्छा, पहले तो वासे उच्चारण करते नहीं थे, कर लो। ननु तम एक नेमिम इत्यादि ना सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम। पहले ननु तम एक नेमिम इस मंत्र के द्वारा इत्यादि ना माने पंचस्रोता, ये मंत्र के द्वारा तम एक नेमिम इस मंत्र के द्वारा सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम। कैसा ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया? कार्य ब्रह्म यानी प्रपंच वाला ब्रह्म का प्रतिपादन किया। सप्रपंच माने प्रपंच के सहित, प्रपंच क्या है? चक्र, संसार चक्र। उस संसार चक्र के सहित जो ब्रह्म है वे सविशेष ब्रह्म, संसार चक्र कार्य है इसलिए कार्य के सहित ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। तो सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम, उसका स्वरूप का वर्णन किया गया, प्रपंच के सहित ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। हां, तो उससे तुम्हें क्या आपत्ति हुई? बोले अब सुनो आपत्ति क्या है। तथा च सति, यहां संधि है सति अहम, तो ये कोई एणची से ई के जगह पर यह हुआ सत्यहम, सति अहम सत्यहम। तथा च सति अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तौ अपि सप्रपंचस्यैव ब्रह्मणः आत्मत्वेन अवगमात् तम तथा तम यथा यथोपासते तदेव भवति इति सप्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव स्यात्। पूर्व पक्ष ये पूछ रहा है, यदि ऐसा सप्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन किया और उस सप्रपंच ब्रह्म का कोई, ब्रह्म की कोई उपासना करता है, तो अहम ब्रह्मास्मि ये जो महावाक्यों का लक्ष्य है, लक्षणावृत्ति के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करनी है, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य का लक्ष्य है ब्रह्म और जीव की एकता सिद्ध करना है, और उस ब्रह्म को जब सब प्रपंच सिद्ध कर रहे हो तो सप्रपंच ब्रह्म के ज्ञान से सप्रपंच की ही प्राप्ति होगी। संसार से निकलने के लिए, संसार चक्र से निकलने के लिए ब्रह्म की उपासना करनी है, ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्त करनी है। और ब्रह्म को तुमने प्रपंच सहित वर्णन कर दिया है तो प्रपंच सहित ब्रह्म का उपासना करेगा तो वह सप्रपंच ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा ना, क्योंकि आगे श्रुति ये भी कह रही है तम यथा यथोपासते तदेव भवति। उपासक जिस प्रकार के ब्रह्म की उपासना करता है वह उसी रूप को प्राप्त करता है। तब सप्रपंच ब्रह्म की उपासना करेगा तो उपासक सप्रपंच ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। तब फिर अहम ब्रह्मास्मि इसका, इस महावाक्य के अर्थ से उपासक को क्या कहना पड़ेगा? अहम ब्रह्मास्मि के साथ साथ अहम सप्रपंच ब्रह्मास्मि ये कहना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं बात? तो आप पहले अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य के साथ इस प्रसंग को जब जोड़ते हैं तब उपासक क्या कहेगा? सप्रपंच ब्रह्मास्मि, अहम सप्रपंच ब्रह्मास्मि ये कहना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि सप्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन किया और वो सप्रपंच ब्रह्म की उपासना की बात कर दी तो श्रुति एक दूसरी श्रुति क्या कह रही है? ये था यथो उपासते स तदेव भवति। तो जिसकी जिस रूप में उपासना करता है उपासक उपास्य रूप भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्म की उपासना करता है तो ब्रह्म रूप भाव को प्राप्त कर लेगा वो। तो आप कहोगे ये तो लाघव है, अच्छी बात है, जीव की जीवपना खत्म हो जाएगी तो वो ब्रह्म रूप। लेकिन विडंबना क्या हो गया? सप्रपंच ब्रह्म का स्वरूप वर्णन कर दिया, वही सप्रपंच ब्रह्म की उपासना करेगा तो ब्रह्म रूप की तो प्राप्ति तो करेगा, कैसे ब्रह्म रूप की? सप्रपंच ब्रह्म से। तो फिर निकला पहाड़, खोदा चुइयां, खोदा पहाड़ निकली चुइयां, या पुनर्मुसिको भव, सुना है ना ये कहा? पुनर्मुसिको भव, ये दृष्टांत तो सुना है कि नहीं? ये कोई सिद्ध महात्मा थे, कहते हैं एक चूहा उंदर, उसको बिल्ली से बहुत डर लगता था। तो एक दिन किसी के यहां कुछ खाने को मिलेगा करके वो घूमता रहा, तो बिल्ली बैठी थी, बिल्ली झपटने के लिए पीछे पड़ गई, वो डर गया बेचारा। तो उंदर आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे बिल्ली। तो उंदर को ये पता है कि ये बिल्ली अब मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे जीवन का अस्तित्व ही समाप्त कर देगा, खा डालेगी बिल्ली। तो क्या करूं? तो डर भी रहा था, भाग रहा था तेजी से, अचानक किसी सिद्ध महात्मा को देखा तो उनके गोद में जाकर बैठ गया, छुप गया। कौन? चूहा। चूहा भी बड़ा बुद्धिशाली है, वो छुप गया महात्मा के गोद में। महात्मा ने देखा तो उंदर बेचारा कांप रहा है, पता नहीं किसी जन्म का कोई योग भ्रष्ट रहा होगा वो, जो उसको ये तो विश्वास है कि महात्मा मेरा अहित नहीं करेगा, नहीं तो सभी चूहे मनुष्य को देखकर निर्भय तो नहीं होंगे ना। लेकिन उसको ये विश्वास था कि ये महात्मा है, पूर्व जन्म का संस्कार काम कर गया होगा, उनके गोद में वो निश्चिंत होकर बैठ गया। अब उधर बिल्ली ने देखा कि ये महात्मा है, ये तो मुझे मार डालेगा। चूहा उसके शरण में गया, अब मेरे पकड़ से बाहर हो गया। बिल्ली चली गई। महात्मा ने उसको कहा, हे अब तो बिल्ली चली गई, तो भी निकल के चला जा। नहीं महाराज, ये कल फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी। इस तरह तो हमेशा ही वो मेरे पीछे पड़ती रहेगी, मैं कब तक भागता रहूंगा? तो मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा कि मैं क्या करूं, तब तेरी नियति यही है, क्योंकि तू चूहा होकर पैदा हुआ है, वो बिल्ली होकर पैदा हुआ है, जीवो जीवस्य भोजनम, नियति यही है, एक जीव दूसरे जीव के भोजन बन जाते हैं। हमें कुछ लोग को जब हम कहते हैं कि तुम लोग मांसाहार छोड़ दो, हम कहते हैं, विशेष करके 3 महीने अमेरिका घूमा और वहां मांसाहार छोड़ो कहना बड़ी विडंबना, उसके बिना तो जीते ही नहीं है, वहां बड़ा मुश्किल है भाई। मांस खाना छोड़ो, ये बात उनके दिमाग में नहीं आता, नहीं खानी, नहीं खाना चाहिए, एक खाने योग्य पदार्थ नहीं है। फिर भी हमने 3 महीने तक कहना नहीं छोड़ा, कहते गए। तो अमेरिका में मांस खाना छोड़ो ये कहना तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो हमसे कहा कि महाराज, अमेरिका में आकर आप ये कहते हो, हिंदुस्तान में होते तो कह देते तो शायद आपके मानते भी, वहां तो ये संस्कार है, अमेरिका में तो ये है ही नहीं। बोले इसीलिए तो हमको अमेरिका में ही ज्यादा कहना पड़ रहा है। तो हम तो कहेंगे भाई, तुम छोड़ो चाहे ना छोड़ो, हम कहना नहीं छोड़ेंगे, कहते रहते थे। तो हमारे इस वाक्य को सुनते ही कहते हैं, नहीं महाराज, शास्त्र में तो लिखा है जीवो जीवस्य भोजनम, बोले जी हम नहीं पढ़ा और हमारे ऊपर ही प्रहार करते हैं वो, ये तो लिखा है जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है महाराज। हमने कहा ये वाक्य उनके लिए है जो स्वाभाविक मांसाहारी है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिसका आहार ही वही है उसके लिए ये वाक्य है। तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य का अन्न भोजन तो अन्न है, वनस्पतियां हैं,